والی کہ جو اس نے احتیاطاً یا کسی بھی اعتبار سے وہ اس کے بالوں پر آئی ہوئی تھی یا کہیں بھی یا چہرے پر یا ماتھے پر کسی جگہ پر بھی اس کا ہاتھ پہنچ گیا مسا کا. تو اب یہاں پر تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی, اور وہ یہ کہ اب ابھی بھی اس کا وضو باطل نہیں ہوا, کوئی اس نے گناہ نہیں کیا. صرف اس کو کرنا یہ ہوگا کہ جب یہ پاؤں کا مسا کرے گا تو اس پاؤں کے مسح میں اپنے ہاتھوں کا وہ حصہ, اگر کوئی ایک انگلی لگی ہے اس کا سرا لگا ہے اس نئی تری کو, اس ماتھے کی تری کو, تو اس حصے کو پاؤں کے مسح میں اوائڈ کرے, اس سے یعنی اس کے اوپر ڈپینڈ نہ کرے پاؤں کے مسح میں. یہ بات یہاں سے در حقیقت آئی ہے کہ جو مسا آپ کریں گے, چاہے سر کا مسا ہو چاہے پاؤں کا مسا ہو, یہ رول ہے, یہ ضروری کہ سر اور پاؤں کے مسح کے لیے جو تری آپ استعمال کرتے ہیں ہاتھوں کی, یہ وہی تری ہو کہ جو جس وقت آپ نے الٹا ہاتھ مکمل دھو لیا, اب جو بھی آپ کا سیدھا اور الٹا ہاتھ گیلا ہے بس یہ جو تری موجود. اسی سے ایک اور مسئلہ نکلتا, بعض اوقات ہوا بہت تیز چل رہی ہے, انسان سفر میں ہے, پاکستان میں ہندوستان میں یہ پیش آ سکتا ہے, اور باہر وہ وضو کر رہا ہے تو مثلا اس کا ہاتھ جو ہے وہ خشک ہو گیا, تو اب یہاں پر وہ کیا یہ کر سکتا ہے کہ نلکے سے مثلا کوئی تری لے لے؟ نہیں کر سکتا. اچھا نلکے سے تری نہ لے, لیکن جو اعضائے وضو پر پانی موجود ہے وہ تو وضو کا پانی ہے. یہ سوال بھی کرتے ہیں لوگ کہ بھئی اگر ہمارا ہاتھ خشک ہو گیا, ابھی کل پرسوں ہی مجھ سے سوال کسی نے کیا کہ اگر ہمارا ہاتھ خشک ہو گیا اب ہم کیا کریں, دوبارہ سے پھر سے وضو کریں یا مثلا بس کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ کر ہی لیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا, عمل کے وقت, عمل کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے صحیح کیا نہیں کیا, اس کی ڈیٹیلز الگ ہیں, لیکن عمل کے دوران آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہوا ہے, صحیح ہو رہا ہے. تری ہاتھوں میں مسا کرنے کے بعد مثلا پتا خیال آیا کہ تری کچھ کم تھی, اب اس کی ڈیٹیلز الگ ہیں, لیکن مسا کرنے کے دوران جو ہے آپ کو لگ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے, شک ہو رہا ہے آپ کو کہ میرا مسا صحیح نہیں ہو رہا, یہ تری ہے یا نہیں ہے, تو یہاں پر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی. نماز کے بعد آپ کو جماعت کے اتصال میں شک ہو گیا, بڑی پریکٹیکل مثالیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. جماعت کے دوران آپ کو شک ہو گیا کہ مثلا جو نماز جو جماعت ہے اس میں اتصال شاید خراب ہو گیا, کہیں پر بگڑ گیا ہے, کہیں پر کچھ نمازی چلے گئے, شک ہو رہا ہے آپ کو, نو پرابلم. لیکن نماز پڑھنے یعنی جماعت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو یقین حاصل کرنا چاہیے کہ جو اتصال ہے وہ پورا ہے, شک شک میں نہیں چلے گا, اتصال پورا ہے, شرائط پوری ہیں, یقین حاصل کرنے کے بعد. خیر چھوڑ دیجئے میں کہاں جا رہا ہوں. تو اب اس میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ انسان اچھا ٹھیک ہے نلکے سے پانی نہیں لے سکتا تو اپنے ہاتھوں سے لے لے, اپنے چہرے سے لے لے, اس کی بھی اجازت نہیں. اجازت ہے صرف اور صرف احتیاط واجب کے اعتبار سے آغا سیستانی کی کہ اگر ایسی سچویشن ہو گئی تو اگر ہاتھوں کی تری اتنی ہے کہ صرف سر کا مسا ہو سکتا ہے تو اس تری سے سر کا مسا کرے. اب پاؤں کے لیے کیا کرے؟ تو پاؤں کے لیے پھر اجازت ہے کہ اپنی داڑھی پر جو گیلاہٹ لگی ہے, جو تری لگی داڑھی پر, احتیاط واجب ہے کہ اسی سے آپ تری لے سکتے ہیں. خواتین بھائی یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہے, داڑھی ہوتی ہی نہیں ہے. ایک داڑھی والی عورت ہوگی کہ جو امام زمانہ پر حملہ کرے گی وہ ایک الگ سلسلہ ہے, بارش عورت. تو صرف داڑھی سے لیا جا سکتا ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر اس گیلاہٹ کو, اور اس کے بعد اس سے مسا کرے. اور اگر کسی کے داڑھی نہیں ہے, خواتین کے تو ویسے ہی نہیں ہے, اور کسی صاحب کے نہیں ہے, تو وہ بھی اپنی اس ٹھڈی سے پانی نہیں لے سکتے, सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी से पानी ले सकता है। लिहाजा अब उस आदमी को या ऐसी औरत को अगर खुश्क हो गया हाथ, तो अब इसके लिए मसला यही है कि चूंकि जानती है या जानता है कि अब मैं मसा नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए दोबारा वजू करना होगा एहतियात वाजिब की बुनियाद पर आगे सीस्तानी के एतबार से। बाद में और इसकी क्या डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं बाद में बयान करूंगा कि क्या और सहूलतें मिल सकती हैं। खैर, जो मसला हमने बीच में स्प्लिट कर दिया वो कौन सा था, जिसकी ये मिसाल आ गई कि अगर सर के मसह के दौरान हाथ चेहरे पर लग गया, माथे पर लग गया, तो अब ये क्या है, नई तरी। इसीलिए जब आप उल्टा हाथ धो लें, उल्टा हाथ धोने के बाद अगर वो नलका कि जिस पर थोड़ा बहुत पानी पड़ा हुआ और आप उसको बंद करते हैं और ये थोड़े बहुत कतरे आपके हाथ में आ गए, तो इस हिस्से को आप मसा में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मसा बातिल हो जाएगा। यह हो सकता कि उल्टा हाथ धोने से पहले पहले, यानी मुकम्मल धोने से पहले, ये मैं एक तरीका बता रहा हूं क्योंकि फिर लोग जब मसाइल पे अमल करते हैं तो इस तरीके से कि अब वो कहा है कि साहब नलके को अगर हमने बंद किया उस पर पानी पड़ा हुआ है तो पहले मसा वगैरह कर लें उसके बाद बंद करें, इतना पानी जो बह रहा है ये इसराफ हो रहा है। तो बेहतरीन तरीका ये कि देखिए आप उल्टे हाथ को जो धो रहे हैं, अभी आपको पता है कि मुकम्मल नहीं धुला है हाथ, लेकिन अब आपको पता है कि अब जो मैं चिल्लू लूंगा तो उसके बाद, या अब जो मैं हाथ फेरूंगा तो अब मेरा हाथ मुकम्मल धुल जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि मसलन मुस्तहब में से एक मुस्तहब यह भी है कि जो सूरत उल्टे हाथ का चिल्लू डालने की है तो उसमें भी ये कहा जाता है कि मसलन पहले मुस्तहब है कि सीधे हाथ में लें और फिर उससे उल्टे हाथ में डालें और फिर आप इस तरीके से करें। तो आप सीधे हाथ में वो चिल्लू ले लें, अभी आपका हाथ मुकम्मल उल्टा वाला नहीं धुला, आपने नलके को बंद कर दिया, हाथ में तरी लग गई, ये वुजू की तरी वगैरह कुछ मसला नहीं है, इसलिए कि अभी एक तरी आ रही है जिसके बाद आपका हाथ मुकम्मल धुलेगा। तो या चिल्लू जो है जो आखिरी डालना है आपको उससे पहले बंद कर दें, या आखिरी मरतबा जो आपको कंप्लीट हाथ फेरना है उल्टे हाथ पर उससे पहले नलके को बंद कर दें, अब आपके हाथ में वुजू की तरी है, इससे आप मसा कर सकते हैं। एक बात इंशाल्लाह कि यह बात वाजे हो गई होगी, ये मसला वाजे हो गया होगा कि बस नई तरी हाथों को धोने के बाद अब मसा में इस्तेमाल नहीं होगी। पांव का मसा, इसकी लंबाई किसी भी पांव के किसी भी नाखून से, उसके सिरे से लेकर, देखिए एक सूरत होती है पांव का उभार, जो पांव अगर आप हाथ खींचें तो एक उभार आता है, ये उभार तक बाद लोग जो है अपना हाथ खींचते हैं, अगर वो आ गए सिस्तानी की तकलीद में है, आ गए खुई की तकलीद में है, तो उनका वजू बातिल, मसा बातिल, और जो आ गए इमाम खुमैनी, आ गए रहबर की तकलीद में है, तो उनका मसा सही, क्योंकि वो इजाजत देते हैं कि पांव का, देखिए आप पांव का एक उभार होता है, ये उभार जो है आगे सिस्तानी और आगे कोई इसको काफी नहीं समझते, बल्कि वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये जो लेंथ है जो आपने हाथ खींचना है पांव पर, पांव की किसी भी उंगली के सिरे से लेकर मफसल तक, मीम फे स्वाद लाम, मफसल यानी जहां से इन्फिसाल हो रहा है टांग का और पांव का, अगर आप इसी उभार से और आगे जाएं तो एक गढ़ा सा आपको महसूस होगा, इस गढ़े को कहा जाता है मफसल। तो मसा आपने इस मफसल तक करना है, और फिर वो वाला रूल कि आपको यकीन हो जाए कि पूरी मकदार मैंने मसा कर ली है, थोड़ा सा मजीद और भी खींच लें तो ये आपका पांव का मसा दुरुस्त हो जाएगा। जुराबों पर, जूते पर हमारे यहां मसा बातिल है, इल्ला ये कि तकिये का मोरिद हो, वो एक अलग डिटेल। तो ये लंबाई हो गई, अब इस लंबाई की चौड़ाई कितनी है, कोई भी मकदार हो, यानी अगर कोई इतना एक्सपर्ट हो कि एक ही उंगली से या अंगूठे से वो पांव के उस उंगली के सिरे से लेकर मफसल से थोड़ा ऊपर तक वो ले जा सकता है तर हालत में, तो ठीक, उसने बिल्कुल सही मसा कर लिया। देखिए ये मसाइल कब काम आते हैं, ये जो मैंने सिचुएशन बताई कि आपने अपनी एक उंगली को लिया या दो उंगलियों को लिया और एक मर्तबा यूं खींच दिया या ये एक मर्तबा यूं खींच दिया, अभी तो आप कहेंगे जरूरत क्या है, इसलिए कि मुस्ताब यह कि तीन उंगलियों के बराबर हो, और यह भी हो सकता है कि पूरा हाथ रख दें और थोड़ा सा खींच लें ऊपर, मफसल तक खींच जाए वो। ये सूरत हाल गलत है कि पूरा हाथ रख के ये थोड़ा सा खींच लें आप, ये हाथ आप खींचेंगे एहतियात यही है कि मफसल तक और बल्कि मफसल से थोड़ा ऊपर। यहां पर एक सहूलत खवातीन के लिए कि जो मैंने बात हाथों के धोने में बयान की थी कि अगर सुई की नोक के बराबर भी कोई जगह, बाद औकात इंसान बैठा हुआ मसलन वो संतरा खा रहा है, वो उसकी पीलिंग कर रहा है और उसके बाद वुजू वगैरह किया तो देखा आम तौर पर वो उसके रीशे वगैरह लगे होते हैं, ऑफिस वर्क कर रहा है मसलन बॉल पेन का कोई मसलन एक डॉट सा पड़ा हुआ, ये सारी वो चीजें जो वुजू को बातिल करने का सबब बन जाती हैं, तो चेक जरूर कर लिया करें कम से कम हाथों को, और इस चेक करने का फायदा भी बहुत ज्यादा है। टाइम मेरा तकरीबन खत्म हो गया मसाइल का, लेकिन इस बात को मैं मुकम्मल कर दूं कि हाथों में तो मैंने ये बताया था कि एक सुई की नोक के बराबर भी अगर नाखून का बिल्कुल अंदरूनी एक ये कोना जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है इस पर कोई ऐसी चीज लगी हुई है, चाहे वो नेल पॉलिश का जर्रा ही क्यों ना हो, खवातीन जो नेल पॉलिश लगाती हैं फिर उसके बाद जो मिटाती हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत करें, इसलिए कि अगर एक सुई की नोक के बराबर भी नेल पॉलिश नाखून पे लगी रह गई, वुजू गया, गुसल गया, और जब वुजू और गुसल गया तो नमाज भी गई। खैर, लेकिन पांव में अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो सारे नाखूनों की नेल पॉलिश मिटाना जरूरी नहीं है, किसी भी एक नाखून की नेल पॉलिश मिटा के, चाहे वो बिल्कुल आखिरी छोटी वाली उंगली क्यों ना हो, उसको अच्छी तरीके से उस पर से नेल पॉलिश मिटा के और फिर उसके ऊपर से हाथ फेर लिया जाए तो ये भी काफी है, लेकिन ये सहूलत नेल पॉलिश वाली हाथों में नहीं मिलेगी, इसलिए कि वहां तो बहरहाल पूरा धोना होगा। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो गुफ्तगु हमारी चल रही थी, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो लोग हमारे बारे में मुझ तक पहुंचने तक मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, मुशक्कत उठाते हैं, जहमतें उठाते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उनको अपने तक पहुंचने के रास्ते उसकी हिदायत कर देंगे। इसको इनवान बनाते हुए आजकल के एतबार से बहुत सारी चीजें कि जिनकी वैल्यू तकरीबन खत्म हो गई, ऐसी ऐसी सूरे और ऐसे ऐसे औराद के वाकई जिनको अगर शरायत के साथ पढ़ा जाए तो अगर पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, अगर मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन हमने उसको इतना डीवैल्यू कर दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ माजरत के साथ बेकार औराद ही में उसका शुमार होता। इसी तरीके से एक अहम तरीन चीज कि वाकई अगर कोई चाहता है अपनी इसलाह करना, सिर्फ और सिर्फ चाहे वो इसलाह दुनिया की हो चाहे वो इसलाह आखिरत की हो, दुनिया की इसलाह जो भी दुनियावी इशू है, चाहे उसमें रिस्क का मसला आ जाए, सैलरी का मसला आ जाए, बीमारी का मसला आ जाए, बेटी की शादी का मसला आ जाए, कर्जों का मसला आ जाए, और ना मालूम दुनिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सब के सब, अगर वाकई इंसान चाहता है कि उनकी इसलाह कर ले, मौलाए कायनात ने एक रूल बयान किया, तीन चार बातें की कलिमात क़िसार में, और उन्हीं बातों में यह भी फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि माशरे के अंदर जो सोशल मसाइल हैं तुम्हारे लोगों के साथ रवाबित, माशरे के लोग तुमसे खुश रहें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसाला, बाकायदा रिवायत का यह जुमला है कि जो अकलमंद होता है वो हर एक से बना के रखता, ये बाकायदा रिवायत का मफहूम, यानी ये अकल का तकाजा है कि इंसान दोस्तों को पैदा करे दुश्मनों को पैदा ना करे। आकिल होता है वो शख्स, और वो जो हर एक से लड़ता भड़ता रहे, जरा जरा सी नॉन इश्यूज को इश्यूज बना ले, इसका मतलब ये, सबसे पहली बात ये है कि उसकी अकल के अंदर कुछ खराबी, उसकी अकल के अंदर कुछ कमी। तो मौला फरमाते हैं कि सोशल कॉन्टेक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्कुल सही रहें और उसमें आपको कोई भागदौड़ भी नहीं करनी, इन्हीं ताल्लुकात की खातिर इंसान हांफता कांपता बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करता हुआ वो मसलन उस दावत वलीमा में या शादी में भी जा रहा है कि भाई वो नाराज ना हो जाए। इमाम फरमाते तुम अल्लाह से अपने कॉन्टेक्ट को सही रखो, अल्लाह तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट को बिल्कुल अप टू डेट रखेगा। मौलाए कायनात फरमाते तुम सिर्फ अल्लाह से अपने राबते को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही हो जाओ खुदा के सामने, खुदा के सामने बिल्कुल ट्रू, खुदा के सामने बिल्कुल सही। तो खुदा तुम्हारे जो रिलेशंस हैं, चाहे रिश्तेदार हो, ऑफिस वाले हो, दोस्त हो, कोई हो, खुदा उन रिलेशंस को खुद ब खुद ठीक करता रहेगा। अब ये लफ्ज मैंने कह दिया ठीक करता रहेगा, वो तो साहिब कुन फयकुन है, ये तो फकत आपके समझाने के लिए। तो इसी तरीके से इस किस्म के मसाइल या उखरवी मसाइल, एक आदमी चाहता है कि अपने आप को गुनाहों से बचाए, एक आदमी चाहता है कि आइम्मा से करीब हो, एक आदमी चाहता है कि इमाम जमाना के करीब, एक आदमी चाहता है कि मानवियत को हासिल करे खुजू व खुशू, एक ईमान की लज्जत। देखिए एक लफ्ज होता है कभी मौका मुझे मिले, सिर्फ ईमान नहीं, जो सही ईमान और अच्छे और खालिस ईमान वाले होते हैं वो अपने ईमान की लज्जत को महसूस कर रहे होते हैं। मौलाए कायनात ने ही फरमाया कि खुदा ने इस नमाज के अंदर एक लज्जत रखी, ये जुमला है मौला का, खुदा ने इस इबादत के अंदर, इस नमाज के अंदर एक लज्जत रखी है, तो फिर इस लज्जत का फायदा उठाओ। अगर दुनिया में तुम नमाज की लज्जतों से मुस्तफीद होगे, कयामत में खुदा तुम्हें आखिरत की लज्जतों से मुस्तफीद फरमाएगा। तो नमाज के अंदर एक लज्जत, वो जो मैंने रिवायत पढ़ी थी रसूल खुदा की कि हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसा वत्तीब वजुअला कुर्रतैनी फिस्सलात। तो रसूल ने दो लज्जतों के साथ, यानी उस माशरे के एतबार से, औरत और अच्छी खुशबू, ये लज्जतें, और फिर फरमाया तुम इनको लज्जत समझते हो, वजुअला कुर्रतैनी, और मेरी आंखों की ठंडक करार दी गई है इस नमाज के अंदर। और फिर एक और हदीस में ये जुअला कुर्रतैनी के बाद एक और जुमला फरमाया, मुझे रसूल फरमाते हैं नमाज में इतनी लज्जत मिलती जिस तरह एक बहुत ज्यादा भूखा आदमी, बहुत भूखा आदमी, और उसके सामने बेहतरीन ग़िज़ा लाके रख दी जाए, कितनी लज्जत मिलेगी उसको खाना खाने में। या एक बहुत ज्यादा प्यासा आदमी गला खुश्क हो रहा है प्यास से और इंतहाई मरतूब और इंतहाई ठंडा पानी उसके सामने रख दिया जाए, कितनी लज्जत महसूस होगी। बस इस ऐसी ही लज्जत मुझे उस वक्त महसूस होती है जिस वक्त मैं नमाज पढ़ता हूं। और फिर रसूल ने फरमाया लेकिन फर्क यह है कि जब वो भूखा उसका पेट भर जाता है तो उसकी वो लज्जत खत्म हो जाती है, जब वो प्यासा पानी पी लेता है सैराब हो जाता है तो उसका जी भर जाता, लेकिन ये नमाज में जितनी ज्यादा पढ़ लेता हूं मैं सैराब नहीं होता, मेरा जी नहीं भरता। रसूल फरमा रहे हैं, खुद मौलाए कायनात के पहली मर्तबा दुनिया में आंखें खोल रहे हैं, कहां पहली मर्तबा आंखें खोल रहे हैं मौलाए कायनात आगोश रसूल में, और कौन सी कुरान की आयत पढ़ी, कद अफलहल मोमिनून, फला पा गए मोमिनून, अल्लजीना हुम फी सलातहिम खाशिऊन, वो मोमिन के जो अपनी नमाजों में खुजू व खुशू का इजहार करते हैं। तो अली पहली मर्तबा आगोश रसूल में आंखों को खोलने के बाद जो पहला कलाम फरमा रहे हैं वो पैगाम है नमाज के बारे में, और अली ही का चाहने वाला नमाज को उसकी तौहीन करे, उसकी इंसल्ट करे, उसको बेकार शय समझे, उसको मस्जिद से महदूद शय समझे। मौला तो ये फरमाते हैं याद रखो तुम्हारे जितने आमाल, ये बहुत अहम हदीस है मौला की, तुम्हारे जितने आमाल ये सारे के सारे आमाल तुम्हारी नमाज के जेरे असर हैं, तुम्हारी नमाज इन तमाम चीजों को देख रही होती। हां ये तो बिल्कुल जहन में रखा जाए, इसलिए मैंने अब तक ये बात की भी नहीं, इसलिए कि मेरे सामने मोमिनों का मजमा है, वहाबियों का मजमा नहीं। ये बात जहन में रखी जाए, लम युनादी बेशाई कमा नू दिया बिल विलाया, विलायत अहले बैत से ज्यादा किसी शय के बारे में तो ताकीद की ही नहीं गई है। विलायत अहले बैत, इससे बढ़कर तो कोई शय नहीं, हत्ता नमाज हत्ता हज कोई शय नहीं। इसलिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आदमी वली खुदा से बुग्ध रखकर कुर्ब खुदा को हासिल करे। तो विलायत उसकी सुप्रीम, उसकी क्वालिटी, उसकी जरूरत, वो तमाम की तमाम चीजें इसको अंडरस्टूड रखते हुए, कल को आगे कोई मुझसे एतराज ना कर दे वो बच्चों वाली बातें, मैं तो उसको बच्चों वाली बातें ही कहता हूं कि नमाज और अजादारी को टकरा देना, इमामत और मसलन नमाज को टकरा देना, जो भी विलायत के साए में है ये सारी इबादतें। अगर विलायत अहले बैत नहीं है फिर तो 40 बरस तक वो इमाम की मुलाकात हाजी अली बगदादी के साथ मफादीउल जिनान के अंदर यही तो पैगाम था कि 40 बरस तक अगर कोई सारा साल रोजा रखे, सारी रात नमाज पढ़े और इन 40 सालों में हर साल हज भी करे और उमरा भी करे, सफा और मरवा के दरमियान मारा जाए लेकिन बुग़्ज़े अली रखने वाला है, तो उसकी कोई इबादत उसके काम आने वाली नहीं है। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए इन मारूजात को सुनिएगा। तो ये नमाज वाकई हम भूल चुके हैं, हत्ता वो लोग, मैं बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा, हत्ता वो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं कमा हक्कहू नमाज से फायदा नहीं उठा रहे। इसलिए कि जब हत्ता के परेशानी आ जाती, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि आप ये कीजिए, नहीं कोई दुआ बताइए, कोई ऐसा तावीज, कोई इस किस्म की चीज, बेहतरीन चीज, नस सरी है कुरान, खुदा कह रहा है कि अगर तुम्हें परेशानी हो, नहीं ये मैंने लफ्ज महदूद कर दिए, खुदा ने तो बहुत इतलाक रखा है, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो, कब नहीं बताया। इसका मतलब क्या है, हर चीज जिसमें तुम्हें मदद की जरूरत पड़े, दो चीजों से, अस्सब्र वस्सलात, सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। तो चाहे दुनियावी एस्पेक्ट, चाहे उखरवी एस्पेक्ट, चाहे कोई सी मसला, नमाज नमाज नमाज। और फिर मौलाए कायनात की इंतहाई मुख्तसर सी ये रिवायत, लेकिन इंतहाई अहम रिवायत, अरबी जानने वाले इसकी कैफियत को समझ पाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अस्सलातु तस्तंजिलु अर्रहमा, बहुत मुख्तसर से जुमला मौला का, अस्सलात तस्तंजिलु अर्रहमा, तस्तंजिलु का मतलब क्या है, नाजिल और नुजूल से ये लफ्ज निकला। देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक दो मिनट आपके लूंगा। खराजा, खुरूज, खारिज होना, एक आदमी खारिज, कोई चीज खारिज हो गई उसे हम कहते हैं खारिज होना। लेकिन एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं और सुनते हैं, इस्तिखराज, ये नहीं कहा जाएगा कि साहब तेल जो है वो खारिज हो गया, नहीं, इस्तिखराज किया गया। मादन, ये नहीं कहा जाएगा मादन जो है, जो हीरे जवाहरात, वो मसलन खारिज किए गए, नहीं, इस्तिखराज किया गया। तो इस्तिखराज का मतलब क्या है, जब खराजा ग्रामेटिकली इस्तिखराज में जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज छुपी हुई है, वो इतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रही, इंसान जिद्दोजहद करके खोद के जबरदस्ती उसको बाहर निकालता है, तो कहा जाता है इस्तिखराज। यानी अगर सामने पड़ा हुआ रूमाल मैंने उठाया तो उसे इस्तिखराज नहीं कहा जाएगा। तो अब सुनिए मौला फरमाते हैं इस्तिखराज ही से, ये लफ्ज है कि जिसको मौला ने इस्तेमाल किया, अस्सलात तस्तंजिलु अर्रहमा, नमाज रहमत का इस्तिंजाल करती, यानी रहमत अगर नहीं भी आ रही आपके कुछ गुनाहों की वजह से, तो ये नमाज है जो आगे बढ़ती है और खींच कर रहमतों को आपके घर में लेकर आती है, आपके जिंदगी में लेकर आती है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हम लोग वाकई गाफिल, हत्ता वो मौके के जिसमें हमें नमाज की जरूरत है, परेशानी, उस मौके पर भी डॉक्टर के पास जाने की जल्दी है, वो अपॉइंटमेंट इंटरव्यू देने की जल्दी है। अरे भाई ये कुंजी तुम्हारे पास है, इस पर तो अमल करो, इसको तो सही तरीके से कम एक मर्तबा अपनी नमाज की सलाह। देखिए मेरा ये जो मौजू है ये इस बारे में नहीं है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज पढ़े, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं, वो जो नमाज पढ़ के अपनी नमाजों को जाया कर रहे हैं, खुदारा अभी भी बेदार हो जाए, अपनी नमाज की इस्लाह करें। किस तरह करनी है अपनी नमाज की इस्लाह? एक आयत पहले सुन लीजिए, कुछ आयतें सूरह मारिज की 19, 20, 21 और 22 और 23। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बतहकीक बेशक ये इंसान जो है इसे हरीस और कमजोर बनाया गया, इसकी जो खिलकत हुई बहुत कमजोर और बहुत हरीस और लालची। इजा मस्सहु शर जजुआ, जब इस पर कोई परेशानी आती है तो बेताब हो जाता है, बेकरार हो जाता है, हाथ पांव मारना शुरू कर देता है, आपे से बाहर हो जाता है, जजुआ। इजा मस्सहु शर जजुआ, व इजा मस्सहुल खैर मनुआ, और जब हम इसे नेमतें देते हैं, दुनिया की कुछ लज्जतें ऐसे मिल जाती हैं, पैसा मिल जाता है, मनुआ, तो फिर ये रोक लेता है, मना करता है दूसरों को देने से, दूसरों को शेयर करने से। ये इंसान है कमजोर है, हरीस। फिर इस्तिस्ना, इल्लल मुसल्लीन, सिवाय मुसल्लीन के, सिवाय नमाज पढ़ने वालों के। मगर कौन नमाज पढ़ने वाले? अल्लजीना हुम अला सलातहिम दाइमून, वो नमाजी के जो अपनी नमाजों पर दाइम हैं। इसका एक तर्जुमा और एक माना उलमा ने बयान किया कि अपनी नमाजों में दाइम, इसका मतलब यह है कि अपनी नमाजों को छोड़ते नहीं, आज मुडुआ पढ़ ली कल नहीं, ऐसा नहीं, मुसलसल नमाजें पढ़ते हैं, जो नमाजें पांच हैं उन पांचों नमाजों को तो पढ़ते ही हैं, एक मतलब ये। लेकिन एक और मतलब जो लतीफ तरीन मतलब है और जो एहतमाल दिया जाता है वो ये उलमा फरमाते हैं, दाइमून से मुराद ये कि वो अपनी नमाज पर दाइम है, यानी उनकी नमाज सिर्फ मुसल्ले की हद तक नहीं होती, वो हालत उबूदियत में सिर्फ मुसल्ले पर नहीं होते, मुसल्ले से जब बाहर निकलते हैं तब भी हालत नमाज में हैं, मुसल्ले से जब बाहर निकलते हैं अभी जिक्र खुदा कर रहे थे, अभी कह रहे थे अल्लाह अकबर, और जब रिज़्क का मसला आया तो यही अल्लाह अकबर बाकी है, जब तारीफ और तमजीद का मौका आया तो यही सुभान अल्लाह बाकी है, यही हमदे परवरदिगार। तो जो नमाज में इंसान अपने आप को खुदा के सामने समझता है कि मैं खुदा की बारगाह में हूं, मुसल्ले के बाद भी ये हालत कंटिन्यूटी के साथ दायम रहती है और ये अपने आप को मुसलसल नमाज में महसूस करता है, और जब ऐसे दायम मुसल्ली होते हैं तो यहां पर फिर नमाज अपना पहला असर ये दिखाती है, अस्सलातु तन्हा अनिल फहशा एवल मुनकर, हम नमाज पढ़ रहे हैं और गुनाह की तरफ देख भी रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं गालियां भी जारी हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो जो प्रॉफिट के नाम पर या कमीशन के नाम पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बास कंपनियों के, कितने का बिल बना दो उतने का हम चढ़ा देंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा, नमाज पढ़ने वाला, तो क्यों नहीं रोक रही नमाज? इसलिए कि नमाज है, दाइमी नमाज नहीं है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो नमाज की इस्लाह किस तरह करनी, मैं यहीं पर रोक दूंगा तकरीर को, इसलिए कि मुझे एक और इबादत भी यहीं पर करना जिसका ऐलान हो गया, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा वक्त आपका तूलानी हो, वही मेरी कोशिश है कि 9:45 बजे तक इंशाल्लाह हम इस इबादत से भी फारिग हो जाए। लेकिन نماز کی اصلاح کرنی، کس طرح کرنی ہے؟ تین چار اسٹیپ، تین چار باتوں کا خیال کرنا، انشاءاللہ نماز کی اصلاح ہوگی. اور پھر اصلاح کرنے کے بعد یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ انسان پانچوں نمازیں ویسی پڑھے، کم سے کم ایک نماز تو ویسی ہو. چلیے دن میں ایک نماز نہیں، نماز کی ایک رکعت تو کم سے کم ویسی ہو، پوری رکعت نہیں، کم سے کم ایک سجدہ تو ویسا ہو. لیکن ہو، ویسا ہو تو نماز، یہی ایک سجدہ انسان کو کتنی زحمتوں سے اور انسان کو کتنی رحمتوں میں لے کر چلا جاتا. صرف ایک بات، نماز پڑھتے ہی جو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ایک ہوتا ہے. اب دیکھیے انشاءاللہ آگے جا کر یہ موضوعات آئیں گے، میری بات صرف نمازیوں سے ہو رہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو محروم ہیں ہی، لیکن نماز پڑھنا شروع کرتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، بہت سارے کام یاد آ جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، دل نہیں لگتا نماز میں، گھٹن سی محسوس ہوتی. اس کی بڑی پیاری ایک مثال دی معذرت کے ساتھ، ہمیں وہی بات آ جاتی ہے کہ نماز کی لذت کا علم نہیں ہے، ہم نے چکھی نہیں ہے کہ لذت سجدہ کسے کہتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سجدہ کسے کہا جاتا، اور پھر سجدے میں سر رکھنے کے بعد کیسی کیسی لذتیں. وہ مولا کا جملہ، لو یعلم المصلی ما اختشاہ من جلال اللہ من فطلنا من صلاته، کہ اگر مصلی کو پتا چل جائے کہ کتنی بڑی بڑی رحمتوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے جلال پروردگار کی، من فطلنا من صلاته، وہ اپنی نماز کو کبھی ختم ہی نہ کرے. مولا فرما رہے ہیں تو ایک سجدے کی بھی لذت نہیں ملی، حاصل ہی نہیں کی، پتہ ہی نہیں ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں جس طریقے سے دوائی، کڑوی دوائی پی جاتی. ایک مثال دی جاتی ہے، بس اسی مثال کو دینے کے بعد میں گفتگو تمام کروں گا، کہ ہماری مثال ایسی ہے، کیوں آخر یہ وائے، کیوں ہم جب مسلح پہ آ جاتے ہیں بے چینی ہو جاتی ہے، آفس یاد آ رہا ہے، وہ ٹیبل جو آپ چھوڑ کے آئے ہیں اس پہ کچھ فائل چھوڑ کے آئے ہیں نماز آفس میں پڑھنے مثلاً، وہ کام یاد آ رہے ہیں، فلاں اپوائنٹمنٹ یاد آ رہی ہے، فلاں ٹی وی میچ آنے والا ہے وہ یاد آ رہا ہے، کہ ہوتا کیا ہے؟ اچھا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی بے چینی، بس جلدی جلدی نماز ختم کرے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بہت پیاری مثال ایک عالم نے دی، وجہ یہی ہے کہ ہمیں لذت نماز کو ہم نے کبھی چکھا ہی نہیں. وَإِلَّا اگر ہم لذت نماز کو چکھ لیں تو دل نہ چاہے مسلح سے باہر نکلنے کا، دل ہی نہ چاہے. اور اس کی مثال یہ دی، ایک بچہ پانچ چھ سات برس کا، حجلہ عروسی کے، جس میں، یا حجلہ عروسی، میری اردو بھی کچھ خراب ہو چکی، تو اس میں وہ بستر کے جس پر، جس کو سجایا جاتا ہے، اور وہ سہاگ رات میں جو دلہن بیٹھ کر سج کر وہاں پر اکیلی اور تنہا بیٹھی ہوتی، اگر اس حجلہ عروسی میں، اسی سجے ہوئے بستر پر، ایک سات آٹھ برس کے بچے کو کہا جائے کہ بھائی تمہیں اس بیڈ پہ آج ایک دو گھنٹے بیٹھنا ہوگا، وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ تڑپ اٹھے گا، اس لیے کہ اس کو مزہ آتا ہے کہاں، گلی کوچوں میں کھیلنے میں، اپنے کپڑوں کو غلیظ اور غلاظتوں میں بھرنے میں، چوٹ لگ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کھیل رہا ہے، اس کا شیشہ ٹوٹا، اس کو تو مزہ اسی میں آتا ہے، اس کی لذت غلیظ کاموں کے ساتھ ہے. اس حجلہ عروسی کی لذت کو وہ دلہن جو دو گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ تھکے گی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے ایک لذت مل رہی ہوتی ہے. یہ مثال، جو اگزامپل میں نے اس لیے بھی استعمال کی کہ قبر کے اعتبار سے بھی یہ جملے آئے ہیں کہ مومن سے کہا جائے گا اسی طریقے سے انتظار کر جس طریقے سے سہاگ رات کی وہ دلہن انتظار کرتی، تو انتظار بڑے لذت والا ہوتا. اس دلہن کا دل نہیں چاہے گا کہ میں جاؤں اور جا کے مثلاً گلی کوچوں میں نکل جاؤں، مثلاً سہیلیوں کے پاس چلی جاؤں، اس لیے کہ انتہائی لذت، اور وہ لذت صرف وہ دلہن ہی سمجھ سکتی ہے، وہ بچہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا. لہذا اگر ہم بھی نماز کو اس کم سے کم اس لذت تک لے جائیں تو پھر مصلے پر جو ہماری بے چینیاں ہو جاتی ہیں، یہ بے چینیاں ہو ہی نہ، ये बेचैनियां होती इसीलिए है कि हम अभी तक उन बच्चों की तरह हैं कि जिनका दिल दुनिया में जाकर लगा हुआ है, उसकी गलाजतों में खेलना है, उसकी गलाजतों में पढ़ना है, लिहाजा हमें मजा ही नहीं आता। मजा उन्हीं को आता है कि जो जब सर रखते हैं परवरदिगार की बारगाह में तो सुभाना रब्बी अल आला के साथ सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते व रूह इस तरह से कहते हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी चूम जाते हैं। एक दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो नमाज को किस तरह से हमने उसकी इस्लाह करनी, और मैं आपको अपने वर्ड्स दे रहा हूं, वर्ड्स दे रहा हूं अपने अल्फाज इस मिंबर पे बैठ के, कि अगर उस तरह से थोड़ी बहुत भी हमने इस्लाह कर ली, आप देखिएगा नमाज का यही तो कमाल कि नमाज पूरी जिंदगी को चेंज करती, पूरे कनेक्शंस को सही करती, बातिन को भी सही करती है, जाहिर को भी सही करती है, हर चीज को, टाइमिंग को, एवरीथिंग। लेकिन इस्लाह करनी है किस तरह, इंशाल्लाह वो अगली तकरीरों में। लेकिन नमाज ही में खुजू और खुशू लाने का एक अंदाज वो है जो भी हम करने वाले हैं, और वो ये कि इंसान नमाज पढ़ने से पहले वो नेमतें जो किसी और को नहीं है मुझे मिली हुई हैं, इंसान सोचे, दूसरों की परेशानियों को देखे और अपनी अमनो सकून के बारे में एक लम्हे के लिए फिक्र करे। हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें उन्होंने झटकार दिया, वो लड़की कह रही है कि मेरे ससुराल वाले, कितनी ही बड़ी परेशानियां हों जो बहरेन में इस वक्त हो रहा है, एक लम्हे के लिए जरा सोचिए कि जिस हालत से इस वक्त, जो रिपोर्ट मेरे पास 100 के करीब मोमिनात, किसी का नाम फातिमा, किसी का नाम जैनब, किसी का नाम जहरा, किसी का नाम उम्मे कुलसूम, किसी का नाम सकीना, नहीं मालूम के इस वक्त किस हाल में, नहीं मालूम के इस वक्त कहां है। एक लम्हे के लिए हमारी जवान बेटी अगर मदरसे से, अगर कॉलेज से, अगर कहीं से जरा लेट आ जाए तो दिल घबराने लगता है, दुआएं मांगना शुरू कर देता है। जरा सोचिए तो सही, उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी और किनके कब्जे में, उनके कब्जे में कि जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ यह है कि बुग़्ज़े अहले बैत, बुग़्ज़े शिया। लिहाजा लोग शोर मचाते हैं कि वो कुरान जलाया गया अमेरिका में, वाकई बहुत जुल्म हुआ, कंडेम करते हैं हम भी, लेकिन ये जो मुसलमानों, नाम निहाद मुसलमानों के हाथ जो हजारों कुरान जल गए, 10 मस्जिदें कि 10 मस्जिदों को फकत डिमोलिश नहीं किया गया, पहले आग लगाई गई, पहले तौहीन की गई और उसके बाद फिर उसको बिल्डोजर के जरिए से मलियामेट कर दिया। यह भी तो एक रविश है ना कि भाई डिमोलिश ही करना है, बिल्डोजर लेकर आ जाइए, तबाह कर दीजिए, लेकिन ये पहले जलाना, आग जलाना और उसके बाद तोड़ना, ये वही अंदाज है कि जिस वक्त लोगों ने कहा था कि किस दरवाजे के बारे में कह रहे हो, उस दरवाजे के पीछे फातिमा जहरा है, तो कहने वाले ने कहा था वाइन, ये वही अंदाज है, ये वही तरीका है, पहले दरवाजे पे आग लगाई जाएगी और उसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। बस एक जुमला कहना चाहता हूं, जब किसी घर में आग लगती है तो उस मौके पर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी होती और इस मौके पर बच्चों को या मां संभालती है या बाप संभालता है या घर का कोई खादिम संभालता है, यही अंदाज होता है। वो बच्चे जो जिन्होंने आग नहीं देखी, जिन्होंने इतना धुआं नहीं देखा, जिन्होंने इतनी कयामत नहीं देखी, जिन्होंने इतने नामहरमों को दरवाजा तोड़ते हुए घर में आते हुए नहीं देखा, तो या बाप की पनाह में जाते हैं या मां की पनाह में जाते हैं या घर के खादिमों की पनाह में जाते हैं, मुझे नहीं पता। नन्ने नन्ने हसनैन, वो छोटी सी जैनब, वो छोटी सी उम्मे कुलसूम, अरे जब जहरा के घर में आग लगी, अगर मां के पास जाते हैं तो मां पहलू संभाले पड़ी हुई है, मोहसिन को याद कर रही है, अगर खादिमा फिजा को देखते हैं, फिजा फातिमा की मदद के लिए, और अगर बाबा की तरफ जाते हैं तो बाबा के गले में रसन बंधी हुई है, बस पलट के यही कहते होंगे, ए नाना रसूल अल्लाह, अरे आप क्या गए, हम دوسری مرتبہ یتیم کر دیے گئے. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. یہ مصیبت اور یہ پریشانی جو اہل بیت علیہم السلام پر اب تک موجود ہے اس کا کوئی تصور اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جو حالت ہمارے ان برادر مومنین کی ہے کہ جو اس وقت بحرین میں انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا, جسے جوشن صغیر کہا جاتا ہے, میں بہت زیادہ طولانی انداز میں اس کو نہیں پڑھوں گا اگرچہ مجھ سے کہا گیا, لیکن ایک دو جملوں کے فقط میں ترجمے بیان کر کے جلدی جلدی چاہوں گا کہ اس دعا کو پڑھوں. آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ اور ان مومنین کی